समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के संक में, और आज मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। आज के संक में जब हम आधे घंटे का सफर तय करेंगे ना, तो हम आपको बताएंगे कि क्यों खास है आज का दिन, कौन से विशिष्ट व्यक्ति जुड़े हुए हैं आज के दिन से, और बात करेंगे अपनी धरोहरों की, अपनी परंपराओं की और अपनी संस्कृति की कि क्यों हमें संभाल के रखना चाहिए और क्यों विशेष हम आज इस दिन की बात कर रहे हैं। बहरहाल आज के संक में अभिषेक से मुखातिब होते हैं। नमस्कार अभिषेक।
हेलो नवीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नवीन सक्सेना। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Campaigning for the fifth phase of Lok Sabha elections to end this evening.
प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और दिल्ली में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में प्रचार करेंगे।
दिल्ली पुलिस डिटेन्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स एड विभव कुमार इन कनेक्शन विद स्वाति मालीवाल असोल्ट केस।
भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में विदेशी छात्रों के साथ हिंसा की खबरों के बाद भारतीय छात्रों को घरों में रहने की सलाह दी है।
IMD says heavy rain will continue to lash Kerala in the coming days.
और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है।
And now, Navin, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about International Museum Day.
अभिषेक, अपनी धरोहरों, अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, और इसीलिए दुनिया के तमाम देश अपनी स्मृतियों को सजोना चाहते हैं, और शायद इसी के लिए संग्रहालयों का निर्माण किया गया है। और आज हम इन्हीं संग्रहालयों की बातचीत करेंगे, बताएंगे कि क्यों खास हैं ये, देश विदेश में ऐसे कौन से संग्रहालय हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, संग्रहालयों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बहरहाल ये किसी से छुपा नहीं है, और अगर हम दुनिया के विकास को याद करें तो हमें हर पल संग्रहालयों की जरूरत पड़ती है। वहां जाके हम देखते हैं कि दुनिया का विकास कैसे हुआ, संस्कृति का विकास कैसे हुआ, हमारी जो धरोहर हैं उनको संभाल कर रखने की जगह है ये हमारे संग्रहालय। और आज दुनिया भर में कई संग्रहालय मौजूद हैं, और इनके महत्व को समझने के लिए जो आज का दिन है उसे विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
Yes, absolutely, नवीन, एंड फ्रॉम फेमस पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स टू एलिगेंट स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर, म्यूजियम्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन कलेक्टिंग, स्टोरिंग, डिस्प्लेइंग एंड प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू ह्यूमन काइंड्स हिस्ट्री फॉर सेंचुरीज। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट द रिच एज वेल एज द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड In a fascinating and enjoyable way. You can learn about different cultural values and connect with wider society in an interesting educational environment. And International Museum Day is celebrated annually on May 18th to raise awareness about the importance of museums in a society. It highlights the role of museums as cultural and educational institutions that preserve and promote art, history and heritage. And museums are considered a heritage of humanity and hold plenty of information about history, science and culture. They serve as an educational hub, fostering curiosity, critical thinking and creativity. From art and history to science and technology, museums are vital spaces where education and research need to shape our understanding of the world. And International Museum Day is celebrated to raise awareness about the fact that museums are a crucial means of cultural exchange, development of mutual understanding, and peace and cooperation among individuals. And this day, Naveen, also highlights the educational and cultural contributions of museums, showcasing the importance as repositories of knowledge and history.
इस बार का जो विषय है, इस बार का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का, वो है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। जानते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना के बाद से दुनिया भर के संग्रहालयों को हर वर्ष इस उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और अगर भारतीय संग्रहालयों की बात करें और उसमें भी अगर हम सबसे पहले दिल्ली की बात करें, तो चलिए आपको क्राफ्ट म्यूजियम लिए चलते हैं। अगर इस समय आप दिल्ली में हैं, क्राफ्ट म्यूजियम प्रगति मैदान के पास स्थित है और एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, आप जा सकते हैं। इस संग्रहालय में भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। बहुत कुछ आप यहां से देख सकते हैं, बहुत कुछ आप यहां पे समझ सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक जो है वो यहां देखी जा सकती है। और अभिषेक, वहीं से थोड़ा सा आप इंडिया गेट की तरफ आ जाएं तो आपको राष्ट्रीय संग्रहालय मिल जाएगा। 1960 में निर्मित हुआ था और इस संग्रहालय में भारतीय सभ्यता के विकास से संबंधित चीजों को प्रदर्शित किया गया है। अब अगर आपने राष्ट्रीय संग्रहालय देख लिया है तो फिर आप आईटीओ की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए और वहां पे आपको मिलेगा जॉल म्यूजियम। यहां पे आप कई तरह की गुड़ियाओं का संग्रह देख सकते हैं और इस संग्रहालय की जो स्थापना की थी वो थे मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई। और यहां कई परिधानों में सजी हुई गुड़ियां हैं। विश्व के एक बहुत बड़े संग्रहालयों में से ये एक है जहां पे डॉल्स को रखा गया है। बहादुर शाह जफरबार पे है और चिल्ड्रन एंड बुक ट्रस्ट की बिल्डिंग में ये स्थित है। अब इसके बाद अगर आप चाणक्यपुरी की तरफ आ जाते हैं तो वहां पे आपको रेल संग्रहालय दिखेगा। और अभिषेक, मुझे उम्मीद है कि शायद ही ऐसा कोई दिल्ली का बच्चा होगा जो रेल म्यूजियम ना गया हो।
एब्सोल्युटली, एंड रेल्स आर द इन थिंग्स दिस डेज, इज़न्ट इट? पीपल प्रेफर ट्रैवलिंग बाय रेल।
बिल्कुल।
सो यू हैव टॉक्ड अबाउट द म्यूजियम्स इन दिल्ली। नवीन, नाउ लेट मी टेल आवर लिसनर्स अबाउट द टॉप फाइव म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड। द लूवर in Paris, so let's start with France and the most visited and famous museum in the world, the Louvre. Then we have the Vatican Museum, then also the Metropolitan Museum of Art in New York, the Hermitage Museum in St. Petersburg, and the Prado Museum in Madrid are the top five museums in the world. And let's also talk about the top national museums in India. And some of the most important museums of India, like the National Museum in New Delhi, which you talked about, Indian Museum, and the Victoria Memorial Hall in Kolkata, Salar Jung Museum in Hyderabad, Allahabad Museum, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalay IGRMS Bhopal, and the three National Galleries of Modern Art at New Delhi, Mumbai and Bangalore. And let's briefly touch upon the history of the International Museum Day. The first International Museum Day was organized in 1977 by the International Council of Museums, ICOM. This initiative was born from a resolution aimed at creating an annual event to unite the creative efforts of museums worldwide and raise global awareness about the activities. And since its inception, museums across the globe have been invited to participate in this celebration each year. In 1992, ICOM began the tradition of adapting an annual theme, and in 1997, an international poster was introduced, which was embraced by 28 countries.
अभिषेक, International Council of Museum यानी ICOM एक ऐसा संगठन है जिसका जो मेन काम है, मुख्य कार्य है, वो ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की चीजों को संजो कर रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर अगर आप इस समय राजस्थान घूम रहे हैं तो वहां की सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में देशी और विदेशी जितने भी पर्यटक हैं उनको आज फ्री प्रवेश दिया जा रहा है। कोई टिकट नहीं ली जा रही है। पर्यटकों को माला पहनाकर, तिलक लगाकर, भारतीय परंपरा के अनुरूप उनका स्वागत किया जा रहा है। और अगर आप आज के दिन आप भी राजस्थान घूमने की सोच रहे हैं तो मौका मत चूकिएगा, जरूर जाइएगा और ढूंढिएगा अपने मनपसंद चीजें जो आपको मिल सकती हैं इस संग्रहालय में। इसके अलावा राजधानी के जो राजस्थान है वहां के आमेर महल जा सकते हैं, हवा महल जा सकते हैं, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, ये बहुत महत्वपूर्ण म्यूजियम है, यहां जरूर जाइएगा। जंतर मंतर जा सकते हैं, नाहरगढ़ फोर्ट जा सकते हैं, यहां पे भी निशुल्क प्रवेश है, आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं। और हां, अगर आप इस समय वाराणसी घूम रहे हैं ना तो वाराणसी में सारनाथ जरूर जाइएगा। वहां का जो संग्रहालय है, वहां का जो म्यूजियम है, वो बहुत फेमस है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे ना तो आपको एक विशाल स्तंभ पर दिखाई देंगे हमारे चार शेर के मुख, जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। वो अशोक स्तंभ आपको वहां पे एक यूनिक तरीके से वहां पे रखा गया है और आपको देख के पता चलेगा कि क्यों फेमस है और क्यों हम उसे देखना चाहते हैं।
सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन टुडे ऑन इंटरनेशनल म्यूजियम डे, नवीन, लेट्स रिमेम्बर द वर्ड्स ऑफ विलियम थॉर्सेल, who said museums should be places where you raise questions, not just show stuff. So happy International Museum Day to all our listeners. May museums continue to inspire and educate us about the oneness of art, history and culture.
अभिषेक, देश विदेश के संग्रहालयों की सैर करने के बाद अब हम चलते हैं क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जो पूरे देश में इस समय फैले हुए हैं और जानते हैं कि उनके पास क्या क्या है. तो शायद हम सबसे पहले सिक्किम चलेंगे.
एब्सोल्युटली. एंड सिक्किम, नोन फॉर इट्स ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, हैज वंस अगेन मेड हेडलाइंस फॉर इट्स एनवायरमेंटल एफर्ट्स. लेट्स लिसन इन मोर.
Sikkim has been honored with the prestigious title of Best State in the Environment Education Program by the Government of India. These recognitions come as a testament to Sikkim's dedication to environmental education and conservation. The award was presented during the National Review Meeting held in New Delhi by Namita Prasad, Joint Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Accepting the award on behalf of Sikkim were Rajan Pradhan, Senior Program Officer, and Lakshman Darnal, Information Officer, representing the State Forest and Environment Department. Sikkim also showcased its creative talent by winning the official logo competition for the revamped Environment Education Program. Among hundreds of submissions from across the country, Sikkim entry stood out. Winning logo unveiled during the event reflects Sikkim's commitment to environmental awareness and sustainability. The award, which includes a certificate, trophy and gift hamper, was received by the forest representative in New Delhi yesterday. दिलीराम दुलाल, आकाशवाणी न्यूज गैंगटॉक फॉर परिक्रमा.
सिक्किम के बाद अब आइए आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं. 10 मई से शुरू हो चुकी है विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा. सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जिस तरह से वहां से वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह की यहां से खबरें आ रही हैं, बहुत भीड़ है. संभल कर जाइएगा. और हां, इतना जरूर हम कहना चाहेंगे कि आप दर्शन करने जा रहे हैं तो प्रदर्शन बिल्कुल मत कीजिए. शांति से दर्शन कीजिए और जितने भी तीर्थयात्री वहां पर आ रहे हैं उन्हें भी आराम से दर्शन करने दीजिए. लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. सुगम दर्शन और यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए आवास, भोजन और बहुत सी जो बेसिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है उन्हें सरकार ने ध्यान रखा, विशेष व्यवस्था की गई है. चार धाम यात्रा से जुड़ी और जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता पारिक शक्ति के पास.
उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत अन्य मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं. यात्रा के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है. कपाट खुलने के पहले सप्ताह ही रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. तीर्थयात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस ने यात्रा मार्गों पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं. इसके लिए सरकार ने कई नई गाइडलाइंस जारी करी हैं, जिसके तहत अब भक्त परिसर के 50 मीटर के दायरे में अपने फोन से वीडियोग्राफी नहीं कर सकेंगे. साथ ही यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. प्रशासन के मुताबिक अगर कोई भी श्रद्धालु बिना पंजीकरण कर दर्शन के लिए आता है तो उसे दर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी. यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं. सरकार ने श्रद्धालुओं की यात्रा को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित जिलों में सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात किया है. ये अधिकारी संबंधित जिलों में कैंप कर श्रद्धालुओं को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटे हैं. राज्य में अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर चुके हैं, जबकि 27 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है. चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में पंजीकरण होने के कारण सरकार ने अगले कुछ दिनों के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी है. पंजीकरण से संबंधित जानकारी के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह.
धन्यवाद साक्षी इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमारे सुनने वालों के लिए. और हमें उम्मीद है कि आप इन सब का ख्याल रखेंगे और अपनी यात्रा को सुगम बनाएंगे. आप कहां लिए चल रहे हैं अभिषेक?
यस नवीन, बट बिफोर दैट लेट मी टेल आवर लिसनर्स दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेशनल म्यूजियम डे एंड वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द रोल ऑफ म्यूजियम्स अराउंड द वर्ल्ड एंड हाउ म्यूजियम्स सर्व एज गेट कीपर्स एंड बुक कीपर्स ऑफ हिस्ट्री, हाउ दे हेल्प प्रिजर्व द ट्रेजर्स ऑफ द पास्ट, document the stories of the present and enlighten the path for future generations. Then they also play the role of collecting and preserving history. Now from museums, let's turn attention to a very famous institute. Yes, we are talking about the Indian Institute of Technology, Madras, which is all set to hold internationally renowned convention speaker Mehay at Chennai this year. The six-day gala extravaganza is to be held in the third week of May. Speak Mehay's ninth international convention in Chennai. We have a report.
The Society for the Promotion of Indian Classical Music and Cultural Among Youth is a voluntary youth movement which promotes intangible aspects of Indian cultural heritage. It promotes Indian classical music, classical dance, folk music, yoga, meditation, crafts, puppetry, folk dance and other aspects of Indian culture. Music maestro Ilayaraja will inaugurate the 9th annual international convention at IIT campus from 20th to 26th May 2024. More than 1,500 students and volunteers gather from across India and the world to participate in this week-long festival of Indian culture. Participants will get the perspective of Indian culture, heritage and ethics through the interaction with great artists. On May 25, there will be a continuous performance throughout the night by the artist. More than 150 members, including faculty of IIT, UG, PG and research scholars team, will ensure smooth conduct of this event. This is a great platform for IIT Madras community to experience the rich cultural festival for one week. This is Blissy from Akashavani, Chennai.
In a series covering profiles of key constituencies across states and union territories during the Lok Sabha elections, today we bring a report on Srirampur Lok Sabha constituency in West Bengal. Let's listen to this report by Kalyan Laha.
Srirampur Lok Sabha constituency consists of 7 assembly segments and it will go to poll on 20th May under the 5th phase of General Election 24. The assembly segments are Jagat Ballabpur, Domjur, Uttarpara, Srirampur, Chonditola, Jangipara, Chapdani. 5 assembly seats of this constituency come under Hooghly district and 2 assembly seats come under Howrah district. There are more than 19 lakhs voters in Srirampur constituency, of which 49.50% is female voters. 11 candidates, including 4 independents, are fighting in Srirampur Lok Sabha seat. The city MP of this Lok Sabha seat, Sri Kalyan Banerjee, is from Trinamool Congress. He is in this seat from 2009 Lok Sabha election. He had defeated BJP's Devjit Sarkar by more than 98,000 votes in the last Lok Sabha election. Trinamool Congress has fielded Kalyan Banerjee again in this seat. Kalyan Banerjee is a senior advocate of Calcutta High Court and he has fought many cases for Trinamool Congress. BJP had given ticket to Kavi Shankar Bose in the last assembly election from Srirampur assembly segments, but he was defeated by TMC's Dr. Sudipto Roy. Congress supported CPIM candidate is Deepshita Dhar. She is one of the young left leaders from West Bengal. Trinamool Congress and BJP both are aspiring to win the Srirampur seat. The main issues are CAA, illegal infiltration, Article 370, etc. Senior BJP leaders are accusing Trinamool Congress of using Rohingyas and illegal infiltrators for vote bank. Trinamool Congress has accused BJP of using central agencies to arrest and harass opposition leaders. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम आपको इलाहाबाद लिए चलते हैं और जानकारी देते हैं इलाहाबाद लोकसभा सीट की। इस सीट से जीतकर लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
इस सीट पर पिछले 2 चुनावों से भाजपा जीत रही है। वर्तमान में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई रीता बहुगुणा जोशी यहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी ने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल को 1,84,000 से अधिक मतों से हराया था। इस चुनाव में कांग्रेस के योगेश शुक्ल तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार इलाहाबाद सीट पर मुकाबला 2 राजनीतिक वारिसों के बीच है। भाजपा ने पूर्व राज्यपाल और 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। वही इंडिया गठबंधन से कांग्रेस ने इस सीट पर 2 बार सांसद रहे कुंवर रेवती रमन के बेटे उज्जवल रमन को मैदान में उतारा है। बसपा की ओर से रमेश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार तेज कर दिया है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा और कोराव शामिल हैं। इस संसदीय सीट पर 18 लाख से अधिक मतदाता 25 मई को 14 प्रत्याशियों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
The Mumbai North Central Lok Sabha constituency comprises 6 assembly constituencies, namely Vile Parle, Chandivali, Kurla, Kalina, Vandra East and Vandre West. There are a total of 17,44,000 electors, including around 9,41,000 males, 8,02,000 females and 65 third gender voters. Traffic congestion, infrastructure woes and pollution are some of the issues in this constituency. Let's listen more.
The Mumbai North Central Lok Sabha constituency, often dubbed as Mini Mumbai, aptly represents city's diverse demographics, consisting of a multi-religious and cultural population ranging from slum dwellers to film stars. The constituency has witnessed a fluctuating political landscape over the years. In the recent elections, BJP's Poonam Mahajan defeated Congress Party's Priya Dutt in both 2014 and 2019. However, in 2024 elections, the stage is set for an interesting electoral contest between the BJP and the Congress. BJP has replaced two-time sitting MP Poonam Mahajan with Ujwal Nikam, a senior criminal lawyer hailing from the Maratha community. On the other hand, Congress has fielded Varsha Gaikwad, the Mumbai unit chief of the party and four-term MLA from Dharavi constituency, with a strong grassroots connect. While there are 27 candidates in fray, BJP's Ujwal Nikam and Congress's Varsha Gaikwad are locked in for an intense battle on this seat. Prarthana, Mumbai.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember patriot poet Mukund Das, who died on the 18th of May 1934. Through his writings, Das contributed to the spread of the Swadeshi movement in rural Bengal.
Mukund Das was born on the 22nd of February 1878 in Munshiganj district, now in Bangladesh. When he was 7, the family migrated to Borishal, where they settled permanently. Das grew up listening to Vaishnav bhajans from his father and began to compose and sing songs on his own. He was initiated into the nationalist movement by Bengali educationist and patriot Ashwini Kumar Datta. In 1900, Das took initiation in Vaishnavism from the monk Rasanand Thakur.
In 1905, Ashwini Kumar Datta gave an inspiring speech at the Borishal Town Hall against the proposed partition of Bengal. Datta wished that messages from the leaders could be carried to the villages through dramas and plays. Mukund Das was deeply moved by Ashwini Kumar Datta's speech. He resolved to fulfill the wish of the great patriot. Within 3 months, he composed his masterpiece, Matri Puja. The primary theme of his drama was patriotism and freedom movement.
Das raised a Swadeshi theatre group to stage plays across the villages of Bengal. In 1906, Mukund Das staged his plays at different places of Borishal and then travelled to Noakhali and Tripura.
Matri Puja successfully ran for 2 years and roused the patriotic feelings of the masses of Bengal. The play was further popularized by the press. Vande Mataram, Yugantar, Sandhya, Nobashakti, Prabhasi and Modern Review played a part in popularizing the drama. The government of newly formed Eastern Bengal and Assam clamped down heavily on the play, citing incitement to violence. In 1908, he was stopped by the police when he tried to stage the play in Bagerhat. Mukund Das was arrested and imprisoned for 3 years on charges of sedition.
Mukund Das joined the non-cooperation movement. When the movement was called off, Mukund Das settled with his group in Kolkata. Matri Puja was banned by the government and he began to compose social plays in order to avoid being banned. In 1932, the government banned all his plays. After the ban, Das was restricted to singing only. He, along with his group, performed only musical shows.
Mukund Das breathed his last on the 18th of May 1934. The immense collection of his writings continue to inspire Indians through decades.
We also remember martyr Hormeen Khan, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. He was caught by company troops in the course of their attacks. He was sentenced to transportation for life with labor in iron in 1857 and sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858. He was caught by the British at the time of his escape from their detention and hanged on the 18th of May 1858. We salute the great son of the soil.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar.
परिक्रमा में अब बात खेलों की दुनिया की। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शुरू होगा शाम 7:30 बजे से। और अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों को जो जुड़े हुए हैं आज के दिन से।
जॉर्ज हार्वी स्ट्रेट सीनियर वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1952। ही इज एन अमेरिकन कंट्री म्यूजिक सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर। स्ट्रेट इज क्रेडिटेड फॉर पायनियरिंग द न्यू ट्रेडिशनल कंट्री स्टाइल इन द 1980s, फेम फॉर हिज ऑथेंटिक cowboy image and roots oriented sound at a time when country pop crossover acts dominated the Nashville music industry. Given his influence on the genre, Strait has been named as the king of country music by writers and music critics. Let's listen in to his hit track The Chair, and it's from his 1985 album Something Special.
Well, excuse me, but I thank you got my chair. No, that one's not taken. I don't mind you sitting. I'll be glad to share.
हिंदी फिल्मों में जब भी माँ की भूमिका की बात होती है तो अक्सर नाम आता है निरूपा राय का, लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों की आधुनिक माँ रीमा लागू की। आज रीमा लागू की पुण्यतिथि है। फिल्मों में मां की शानदार भूमिका निभाने के लिए उन्हें जाना जाता है। रंगमंच से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मैंने प्यार किया का खूबसूरत सा डायलॉग है रीमा लागू पे जो फिल्माया गया, सुनते हैं।
सुमन जरा चल तो। कहाँ दीदी? चल जरा प्रेम से उसकी शादी की बात कराए। हाँ सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके इस घर में बहू ले आओ। चल आ जा। प्रेम हम लोग तेरी शादी की बात करने आए हैं।
शादी?
हाँ तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है ना मैंने। क्या हुआ रे? जैसी तूने कहा था बिल्कुल वैसी है वो लड़की। सलवार कमीज चूड़ीदार वूड़ीदार कुछ नहीं पहनती है, तो बस जीन्स स्कर्ट मीडी मिनी बस।
लेकिन माँ मेरी बात तो सुनना।
अरे घबरा मत, उसके बाल बिल्कुल बड़े नहीं है, छोटे छोटे पॉप कट। अरे वो ये है वो है खुश।
मातू बैठ। देख माँ,
अरे ले कितने प्यार से दे रही है।
माँ मैंने बहुत सोचा।
अच्छा
तू एकदम सही कहती, ऐसी लड़की घटता काम का थोड़ी करी। अरे मटर थोड़ी छिलेगी माँ।
छिलेगी जरूर छिलेगी। क्यों सुमन? और नहीं छिलेगी तो छिलवाएंगे हम।
मामा, लेकिन माँ बड़ों की इज्जत, हम उम्र से अपनापन, छोटों से प्यार, ये सब थोड़ी करेगी माँ। नहीं पापा
नहीं करेगी तो क्या करे?
माँ तू ऐसा कर,
क्या
तू अलग किस्म की लड़की ढूंढना, तू पास में ढूंढना, तू अपनी पसंद की ढूंढना।
मेरी पसंद चलेगी?
तू चलेगी क्या? तू बोलना, दौड़ेगी दौड़ेगी माँ।
Yes, and Jack Hoddy Johnson was born on this day in 1975. He is an American singer-songwriter, primarily in the soft rock and acoustic pop genres. Johnson has reached number one on the Billboard 200 chart with his albums, sing-alongs and lullabies for the film Curious George in 2006, Slip Through the Static in 2008, To the Sea in 2010, and From Here to Now to You in 2013. His album In Between Dreams picked at number 2 in 2005 and again in 2013. Let's listen in to his hit track, Upside Down.
Who's to say what's impossible? They forgot this world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything.
generations fade, but in some ways they remain the same.
परिक्रमा के आज के संस्करण में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का संस्करण बहुत पसंद आया होगा। चलते चलते आपको फिर बता दें कि आज संग्रहालय दिवस है, तो अगर आप किसी म्यूजियम के आसपास हैं तो म्यूजियम जरूर देखने के लिए जाएगा, जानकारी बहुत मिलेगी। बहरहाल आज के संक में बस इतना ही। मुझे नवीन और अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।